नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स पर हमारी इस लाइव पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बी द चेंजेस सीरीज का नाम है और मैं हूं आपका दोस्त राजेश्वरी। पिछले कुछ दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं कि बदलाव के इस दौर में हम अपने आप को कैसे ढालें। इस पर कोशिशें हम सब अच्छी कर रहे हैं, मगर जब हम मिलकर कोशिशें करते हैं तो सक्सेस के रेट ज्यादा होते हैं। कभी कभार हमें मदद की जरूरत पड़ती है तो हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मदद लें, किससे लें, और मदद लेने में कभी कभार हिचकिचाते भी हैं। आइए, ब्रह्मा कुमारी यही कोशिश कर रही है कि अगर आपको किसी चीज की मदद की आवश्यकता है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, स्पिरिचुअल विजडम या स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है तो हम उसे यहाँ पर ऑफर करने की कोशिश करते हैं। इस एक घंटे की लाइव कोशिश में हम ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके लेना चाहेंगे। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों में ही आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपके सवाल कुछ प्राइवेट हैं तो आप सोशल मीडिया @ramakumaris.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। आज के बी द चेंज सीरीज में मास्टर ऑफ मेडिटेशन बनकर, हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स बनकर ब्रह्मा कुमारी सपना दीदी जी आई है, जो ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है और दिल्ली में वो फिलहाल अपनी सेवाएं देते हैं और अनेकों दशकों से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए उनके अनुभवों से उन्होंने बहुत से लोगों को इस आध्यात्म की मार्ग पर अग्रसर कराया है और समय समय पर कॉर्पोरेट्स में भी वो लाइफ स्किल्स पर अपने सेशंस कराते रहते हैं। आइए चलिए करते हैं उनसे बातचीत। सपना दीदी, वेलकम टू द शो।
थैंक यू श्रीनिधि भाई
जी। दीदी, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है और जहां तक हम न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पर, अदरवाइज भी टीवी में, सोशल मीडिया पे, हर जगह एनवायरमेंट से रिलेटेड मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और क्योंकि ये स्पेशल ऐसा टाइम रहा है जहां पर नेचर ने हमें एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां पर हमें नेचर के साथ के रिलेशनशिप को रीथिंक करने, री इवेल्युएट करने के इस मौके को दिया है, तो बहुत सारे लोग उस पर भी चर्चाएं कर रहे हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन चल रहा है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं, प्रकृति के साथ हम बेहतर व्यवहार करना चाहते हैं, प्रकृति के साथ हमारे संबंध को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आप स्पिरिचुअली क्या सोचते हैं, इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है इस बदलाव?
आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। स्पिरिचुअली मैं ये सोचती हूँ कि सबसे पहले हमें प्रकृति को अपना मित्र समझना चाहिए। अभी तक हमने उसके साथ मित्रता का संबंध नहीं जोड़ा है, क्योंकि जब हम प्रकृति को अपना मित्र समझेंगे तो हम उससे प्यार करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ प्रकृति को अपने सुख के लिए यूज किया है, वन साइडेड, कि प्रकृति जो है वो मेरे सुख के लिए है और मुझे उसको यूज करना है अपनी कंफर्ट के लिए, लेकिन मुझे उसका भी ख्याल रखना है। तो ये वन साइडेड अफेयर रहा है, लेकिन हमें उसका भी ख्याल रखना है। ये मित्रता हमारी सबसे पहले प्रकृति के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होनी चाहिए। जब हमारा प्रकृति से प्यार होगा, आज हम देखते हैं कि प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है और प्रकृति अपने में सिग्नल्स भी देती है। प्रकृति हमारा कितना ख्याल रखती है, हमें याद है जब हम छोटे होते थे तो बारिश आने से पहले सिग्नल्स आ जाते थे कि बारिश आने वाली है, और बारिश तब तक नहीं आती थी जब तक हम घर में सेफली नहीं पहुंच जाते थे। तो आप देखिए, प्रकृति हमारी कितनी अच्छी दोस्त है कि वो हमारा इतना ख्याल रखती है कि वो कहती है कि पहले घर चले जाओ, फिर मैं बारिश करूंगी। लेकिन जैसे जैसे हमने उसका ख्याल नहीं रखा, तो आज जो है अनटाइमली हम देख रहे हैं कितने साइक्लोन्स और ये सब आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमने प्रकृति के साथ ठीक से मित्रता नहीं निभाई है। तो अब हमारी बारी है, हमें प्रकृति को प्यार करना है, उसका ख्याल रखना है, उससे अच्छी मित्रता करनी है, और जो भी एनवायरमेंट के हमको डायरेक्शंस मिलते हैं उसे हमें दिल से फॉलो करना है। मैं यही सबसे कहूंगी, क्योंकि अगर हमारे प्रकृति का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे लाइफ में जो हम सुख शांति चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए प्रकृति का ख्याल रखना हमारी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए।
जी, जब आप ये बात कह रहे थे तो ये चीज मेरे को लग रही थी कि अब तक तो हमें ये लग रहा था कि हम नेचर का कैसे ख्याल रख सकते हैं। नेचर तो इतनी बड़ी है कि नेचर पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रोवाइड करती है, खाना, पानी, हवा, ये सब कुछ नेचर प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, मगर जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जो जलचर हैं, पानी।
जैसा श्रीनिधि भाई बता रहे थे कि प्रकृति जो है हमारा ख्याल रखती है, लेकिन जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, भारत में तो हम भारत को माता कहते हैं, पृथ्वी को भी माँ कहकर पुकारते हैं, तो माँ बाप तो बच्चों का ख्याल रखते ही हैं, लेकिन बच्चों का भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें। तो इसीलिए प्रकृति को हम वो दर्जा जब देंगे कि वो हमारी माँ है और माँ का ख्याल रखना है, तो जब उस दर्जे से उसको उसका प्रॉपर दर्जा देंगे, तब हम उसका ख्याल रख सकेंगे। अगर हम उसको मात्र एक जड़ पेड़ या इस तरह से समझेंगे कि ये तो जड़ चीजें हैं, इनसे तो बस हमें लेना है जैसे बाकी हैं, ये एक जड़ है, तो फिर हम उनका ख्याल, क्योंकि प्रकृति में भी चैतन्यता है। आज हम देखते हैं हमारे यहाँ पर योगिक खेती होती है, और उसमें जब हमने देखा है कि जब हम पौधों को प्यार से उनको दृष्टि देते हैं, तो उसका जो आउटपुट है, जो रिटर्न है, वो दुगना हो जाता है ना? मैं भी जब कोई पौधा होता है तो उसको मैं बहुत प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ना, तो मेरे लिए ये पौधे एक बच्चे के समान है, उनकी पालना करनी है ना। और पृथ्वी के ऊपर जैसे हम प्लास्टिक्स फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, है ना, अब आप सोचिए कि आपके घर में कोई ऐसे फेंके तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो ये पृथ्वी हमारा घर है, हमको कितना कुछ देती है, तो इसके साथ अपना एक प्यार का, एक मित्रता का संबंध जोड़े और उसका ख्याल रखें।
बहुत सारे सवाल हैं जो हमें लेने होते हैं एक दिन में, और कोशिश हम यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम सवाल ले सकें। अगर हमारे दोस्त कुछ पूछना चाहते हैं या फिर वो कुछ बात बताना चाहते हैं, सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ सपना दीदी हैं, तो दीदी जी हमारे सवालों का मार्गदर्शन भी करेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां समाधान देने की भी कोशिश करेंगे। एक सवाल मेरे मन में ये था जो कल हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा था। किसी ने कहा था कि चले जो पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स को हम बड़ा समझ के चलते हैं, तो उनसे हमेशा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि वो देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। बट जब आपने ये बात कही कि जब हम प्रकृति को अपने माँ के रूप में देखेंगे, तो जहां पेरेंट्स को हमारी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर भी हमें एक रिवर्सल ऑफ रोल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आजकल जो कॉमन सी चीज जो हमें आम सुनने को मिलती है कि वो क्लाइमेट चेंज है, और ये जो COVID-19 से रिलेटेड चीजें हैं उसमें भी ये कहा गया कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पीशीज को कंज्यूम करने की जो ह्यूमन हैबिट हो गई है, जिसके कारण हम प्रकृति के जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी वजह से ये नए नए वायरसेस एनिमल किंगडम से हमारे पास आ रहे हैं, जूनोटिक डिसीज हम इसको कहते हैं। मनुष्य अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि हम बॉडी को फ्रेंडली बने, हम अपने लाइफस्टाइल को प्रकृति के साथ सामंजस्य जैसा मिला जुला के चलने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम इंटेंशन तो बहुत अच्छा रखते हैं कि भाई चलो अगर मैं वेजिटेरियन बन जाता हूँ या वीगन बन जाता हूँ तो मैं प्रकृति के लिए कर रहा हूँ, मेरे आसपास के पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ऐसे सोचते हैं। फिर बाद में लगता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, दूसरे लोग तो वही कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं अकेला बदल जाऊँ तो क्या होगा, तो ऐसे टाइम पे क्या करें?
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जब सारे लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, एक मेरे अकेले से क्या फायदा हो जाएगा। बहुत छोटी सी एक जो स्टोरी हम बचपन में सुनते थे, वो एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया जो है जंगल में आग लगी होती है तो वो एक अपनी मुंह में थोड़ा सा पानी डाल करके और वो आग को बुझाती है तो सब उस पर हंसते हैं कि ये तुम क्या कर रही है, तुम्हारे इतने से क्या आग बुझ जाएगी। तो वो कहती है कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा है। तो इसी तरह से कई बार क्या होता है कि जब हमारे सामने विश्व की और समाज की बातें आती हैं और हम देखते हैं कि मेजॉरिटी अगर उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं तो हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि जब सब ये कर रहे हैं। अगर जैसे एनवायरमेंट की बात है, हम देखते हैं कि एक जगह कोई कूड़ा फेंकता है तो उसको देख करके सारे लोग ही कूड़ा फेंकना वहां शुरू कर देते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि नहीं मुझे नहीं करना है। अब ऐसी सिचुएशन में स्पिरिचुअल टिप क्या है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मैं कर्म सिद्धांत बताना चाहूंगी कि कर्म हमें ये सिखाता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। अब जो गलत कर रहा है तो उसको उसका रिटर्न भी गलत ही मिलेगा। तो अगर सब लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं और मैं भी उसको फॉलो करूं तो ये कोई समझदारी तो सबसे पहली बात है नहीं है। और अगर दूसरी बात कि जहां पर हम लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्या मैं वो नहीं बन सकती या क्या मैं वो नहीं बन सकता जो लीड करूं, जो एक रोल मॉडल बनूं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर एंथुसियाज्म पैदा करने के लिए मैं ये परिवर्तन लाऊं, ये चेंज लाऊं, क्या मैं वो नहीं कि जो वो चेंज लाए? आज हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था आज इतनी बड़ी है, अगर इनका देखें तो जो फाउंडिंग फादर हमारे प्रजापिता ब्रह्मा है ना, जब ये 83 इयर्स ओल्ड पहले शुरू हुआ तो वो अकेले थे और बहुत से लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी लोग उनके अगेंस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग से ये कार्य शुरू किया और आज संस्था यहां तक पहुंची। तो ये हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी सोच है, तो उस सोच पे जब तक हमारे दृढ़ता नहीं होगी, डिटर्मिनेशन नहीं होगा, तब तक हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये समझ लीजिए कि आज के समय में आप जो भी अच्छा कार्य करने जाएंगे उसमें ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली आएंगे, चाहे वो ऑब्स्टिकल मेरे अपने ही थॉट हो, मेरे अपने ही वीक थॉट्स। तो ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके, अपने ही वीक थॉट्स को क्रॉस करेंगे और उसमें जो मुझे खुशी मिलेगी, अब वो कंपेयर कर लें, नहीं करने से खुशी मिल रही है कि करने से खुशी मिल रही है? नहीं करेंगे तो अंदर में एक गिल्ट फीलिंग आएगी, एक लो फीलिंग आएगी कि मैं कर सकता था और नहीं किया, और करेंगे तो खुशी भी आपको मिलेगी और आपको देखकर और लोग अनेक आपके साथ जुड़ेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपने साथ ये डिसीजन और डिटर्मिनेशन, अपने अंदर दृढ़ता लानी पड़ती है और एक सही रास्ते पर चलना होता है।
जी दीदी, कल का एक प्रश्न है जो मैं आज लेना चाहता हूँ। स्क्रीन पर भी एक सवाल है जो YouTube से प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, YouTube पे देख रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हम नेचर के लिए अच्छा वाइब्रेशन भेजते हैं, हम अपनी शुभकामनाएं और शुभ संकल्प भेजते हैं, दैट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन द नेचर, उसका असर प्रकृति पे होता है। मगर ये जो अभी अनप्रेसिडेंट सिचुएशन है COVID-19 का, तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने की कोशिश कर रहे हैं पर प्रकृति में हम बदलाव नहीं देखते, तो इसका क्या कारण है?
देखिए, कोई भी चीज होती है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, जितनी स्ट्रांग चीज होती है, जैसे अगर आप लोहे को पिघलाना चाहते हैं और एक है आप प्लास्टिक को पिघलाना चाहते हैं, तो दोनों को पिघलाने के लिए अग्नि की जो आग की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट चाहिए होगी। तो उस लोहे को मेल्ट करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए होगी। उसी तरह से जैसे आपने कहा कि आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोविड एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, इसके लिए हमको सबको मिलकर के जब हम ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे जिसको हम कहते हैं वॉल्केनिक, वॉल्केनिक स्ट्रेंथ चाहिए होगी इसको, तब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के साथ कुछ मिलता है कि यहां पर अगर हम एक टीम बना लें, धीरे 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 उस टीम में जुड़ जाए और हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाए, तो डेफिनेटली जो है ये जो कोविड की प्रॉब्लम है इसके अंदर परिवर्तन आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। क्या होता है, जैसे हम छोटे बच्चे होते थे ना, तो क्या करते थे, आम की गुठली लेकर डालते थे और एक दिन पानी देखते थे, दूसरे दिन कहते थे पेड़ तो उगा नहीं, फिर खोदते थे मेरी गुठली वहां पर है कि नहीं है, कि कोई निकाल के ले गया। तो उसी तरह से एक अच्छे कार्य करने में ग्रेटनेस के साथ, एक श्रेष्ठ कर्म करने के साथ एक धैर्यता का गुण भी बहुत जरूरी है। इसलिए कहावत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। तो धीरज था, धैर्यता साथ में चाहिए। कोई भी श्रेष्ठ कर्म वेस्ट नहीं जाता है, हर श्रेष्ठ कर्म का फल अवश्य आता है। जैसा बीज होते हैं वैसा फल अवश्य निकलता है।
जी बहुत अच्छा दीदी। बहुत बार हम तुरंत देखना चाहते हैं, आजकल ये सब फास्ट का जमाना चल रहा है। मैं समझता हूँ हमारा फास्ट फूड है, हमारा ट्रांसपोर्ट फास्ट है, सब कुछ हमें फास्ट चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, तुरंत तुरंत होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो इसकी वजह से ये चीज होने लगी है हमारे अंदर,
क्योंकि हम इंस्टेंट चाहते हैं ना,
इंस्टेंट फूड भी चल रहा है, मतलब आप इंस्टेंट पानी डालो, गर्म करो, खा लो।
हाँ, तो वो हमारे अंदर एक हैबिट आ गई है। लेकिन एक चीज और है, मुझे हमेशा पास्ट की बातें जो है ना, जो हमारा पास्ट का लाइफस्टाइल था, चाहे वो बचपन का लाइफस्टाइल था, और आज भले इंस्टेंट है, फास्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ किस में थी। स्ट्रेंथ जो स्लो प्रोसेस से खाना बनता था उसमें टेस्ट भी था और स्ट्रेंथ भी थी। हम सुबह खाना बनाना शुरू करते थे, दोपहर को खाते थे, वो धीरे 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 पकता था, उसमें कितनी स्ट्रेंथ आ जाती थी। आज खेती भी करते थे तो उसको बहुत प्यार से, आज हम उसमें केमिकल्स डालकर उसको फटाफट से, लेकिन वो जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में जो टेस्ट है, जो स्ट्रेंथ है, वो तो नहीं है ना। तो इसीलिए हम हर चीज इंस्टेंट नहीं होती है। वो जो पुरानी स्टोरी है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द गेम, तो वो रैबिट और उसकी, तो कई बार हम लोग जो है ना, आज के इस दौर में हम लोगों का ये नेचर बन गया कि हमको हर चीज चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पर वो सक्सेसफुल होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज हमको कहीं ना कहीं इंस्टेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। अगर उसमें भी हम डिले कर दें तो कहीं कहीं डिले इज डेंजर, ये भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमको, माना ये एक कोई एक ही मैं टिप नहीं दे रही हूँ या एक ही कोई मैं बता नहीं रही हूँ कि इट विल फॉलो एवरीवेयर, कहीं कहीं पर हमको क्विक डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं और कहीं कहीं पर हमें एज पर सिचुएशन वेट भी करना पड़ता है।
बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल है, श्वेता मिश्रा जी कहते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग मेडिटेशन डेली। हमें से बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई अब तो कुछ दिनों से लोग नया नया सीख रहे हैं यूट्यूब पे या फिर किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर टेलीविजन चैनल से, अलग अलग जगह पर लोग ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, तो डेली करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या होता है।
सबसे पहले तो मैं आपसे ये, श्वेता जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप रोज खाना क्यों खाते हैं, रोज पानी क्यों पीते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। हम श्वास भी लेते हैं, रोज ही लेते हैं, तो एक्चुअल में मेडिटेशन जो है ये कोई हम एक्स्ट्रा चीज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब कई लोग मेडिटेशन की, जो मैं यहाँ पर श्रीनिधि भाई थोड़ा सा टाइम लूंगी कि मेडिटेशन क्या है, वो कईयों को क्लैरिटी नहीं है। कई लोग मेडिटेशन को सिर्फ समझते हैं कि बस शांति में बैठ जाना ऐसे आंखें बंद कर करके, दैट इज मेडिटेशन। नो, सिर्फ आंखें बंद करके अगर हम, मेडिटेशन इज नॉट ओनली फॉर पीस। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं है, मेडिटेशन शांति के लिए भी है, लेकिन ये सोच लेना कि जब मुझे शांति चाहिए बस तभी मुझे मेडिटेशन करना है, नहीं। मेडिटेशन इज अ क्लिंजर, मेडिटेशन इज टू गिव्स यू स्ट्रेंथ, मेडिटेशन गिव्स यू हैप्पीनेस, मेडिटेशन गिव्स यू एवरीथिंग। ना, सबसे पहले बात तो हमको ये समझने, जैसे आप एक खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं उसमें सारे के सारे विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, सब कुछ हो, तब बॉडी स्ट्रांग बनती है। सिर्फ पानी पीने से तो बॉडी स्ट्रांग नहीं बनेगी। उसी तरह से मेडिटेशन में, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन इज लाइक अ लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल है। योग एक जीवन जीने की कला है। योग है क्या? योग का मतलब ये नहीं कि बस मैं शांत हूं, ओम शांति एक मंत्र उच्चारण करना। मेडिटेशन मीन्स कि हमारे अंदर सदा सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल रहे, आर्टिफिशियली नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लानी है, मेरे अंदर नेचुरल पॉजिटिविटी आए, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी नेचुरल आ जाए, तो वो मेडिटेशन है। इसलिए इसको कर्म योग भी कहा गया है। ये सिर्फ बैठक योग नहीं है, ये कर्म योग भी है। कर्म करते हुए भी हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी बनी रहे। तो इसलिए सबसे पहले तो मेडिटेशन क्या है जो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन हम क्यों करें वो भी मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली फॉर पीस, और डेली मेडिटेशन करने से आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे, इतने बेनिफिट मिलेंगे। मेरा तो वो फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं, व्हेन आई केम टू द ब्रह्मा कुमारीज आई वाज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। मैं 16 साल की थी और मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई, और जब मैंने यहाँ आकर ज्ञान सुना और मेडिटेशन समझा तो मुझे ये इतना वास्ट फील्ड लगी और इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि आज तक मैं मेडिटेशन की रिसर्च भी करती रहती हूँ और लोगों को मोटिवेट भी करती रहती हूँ कि मेडिटेशन सिर्फ आप शांति के लिए यूज नहीं करें। आप टायर्ड हैं, आप थक गए हैं, आप मेडिटेशन करिए, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी। आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस में जा रहे हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, आपका जो है स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आप जो है रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मेडिटेशन कीजिए, आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। आपके लाइफ में फेल्योर्स आ रहे हैं, आप अपने लाइफ के फेल्योर से बहुत परेशान हैं कि क्यों बार बार फेल्योर आ रहे हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी लाइफ सक्सेसफुल होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से ही हमारे अंदर एंथुसियाज्म आता है, पॉजिटिविटी आती है, स्ट्रेंथ आता है, जो बाहर की जितने भी एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं वो आप चेंज कर सकते हैं विथ मेडिटेशन। तो अब आप बताइए कि आज के दौर में जहां पर हमारे सामने डेली कदम कदम पर इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, वहां पर क्या हमें रोज मेडिटेशन करना जरूरी नहीं? मेडिटेशन करते हैं तो जैसे आप देखते हैं कि हम जो है जब बाहर, जैसे बाहर निकलते हैं, सर्दी होती है तो स्वेटर पहन के निकलते हैं। आज कोविड है, आप सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। ये तो नहीं कह रहे कि पहले मुझे कोविड हो जाए फिर मैं मास्क पहनूंगा, नहीं, पहले मास्क, पहले प्रिवेंशन ले रहे हैं। तो मेडिटेशन इज फॉर प्रिवेंशन। ऐसा नहीं कि आप बाहर जाएं और आपके ऊपर चैलेंजेस का इफेक्ट आए और आपका, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं, मूड ऑफ हो जाए, आप उदास हो जाए और फिर आप कहें अब मैं मेडिटेशन करता हूं, नहीं। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो आपके सामने ये जो छोटी छोटी बातें आती है और रोज छोटी बातों पे उदास हो जाना, मूड ऑफ हो जाना, मैं एक सेंटर चलाती हूँ, मेरे पास मेजोरिटी लोग यही आते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मैं उदास हो गया, मुझे मेडिटेशन सिखा दो, मेरा उदासी ठीक हो जाए, मेरा डिप्रेशन ठीक हो जाए। अगर मेडिटेशन लाइफ में होता तो डिप्रेशन कभी हो ही नहीं सकता था। तो मेडिटेशन जो है, योग जो है, इसको आज इससे मैं कहूंगी आज के दौर में, आज के जमाने में हर एक को मेडिटेशन सीखना चाहिए। इट इज अ नेसेसिटी। एज यू ईट फूड, एज यू ड्रिंक, आप जैसे सांस लेते हैं, वैसे मेडिटेशन इज दैट इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ।
बहुत ही अच्छी बात कही दीदी आपने, वरना बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, जैसे आपने ये बताया कि मेडिटेशन मतलब आंखें बंद करके मैं कहीं बैठ जाता हूँ तो मेडिटेशन है, ऐसा लोग सोचते हैं। सिर्फ शांति के लिए नहीं, बट मेडिटेशन हम अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम उसे डेली पार्ट का, अपने डेली लाइफ का एक रूटीन बना देते हैं, पार्ट ऑफ आवर लाइफ कर लेते हैं, तो देन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगे नहीं, उन्हें हम बेहतर डील कर सकते हैं। तो मेडिटेशन को एक प्रॉब्लम का एंटीडोट समझ के नहीं चले, पर वो आपका एक इम्यून बूस्टर है, वो आपकी हेल्थ को ठीक रखता है, ऐसे समझ लें। कुछ और सवाल है जो हमारे दोस्त पूछ रहे हैं। पारस लीला, पारस ली मनी पूछते हैं, ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, कि आस्क हाउ शुड वी मेडिटेट, व्हेन टू डू। तो बोलते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, उसके लिए कोई टाइम है क्या है, ऐसे पूछते हैं। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, आशा श्रेष्ठ पूछते हैं, फेसबुक पर ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और देख रहे हैं, और फेसबुक पे पूछते हैं कि हाउ टू गिव पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि हमने ये बात कही थी कि हम नेचर को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाए रखें, तो ये कैसे किया जाता है पूछते हैं। और सुचित्रा भासिन है, सुचित्रा जी भी पूछ रहे हैं फेसबुक से हमारे साथ कि आप हमें थोड़ा मेडिटेशन सिखाएंगे। सुचित्रा जी, प्रोग्राम के एंड में हम लाइव मेडिटेशन करेंगे, दीदी हमारे साथ डायरेक्ट मेडिटेशन करवाएंगे, तो आपको एंड तक थोड़ा सा वेट करें। अराउंड 6:55 के करीब हम मेडिटेशन करते ही हैं हर दिन, तो आज दीदी कराएंगे। दीदी, इन दो सवालों के जवाब आपसे
जरूर। देखिए, इतने थोड़े समय में मेडिटेशन क्या है, कब करें, पॉजिटिव वाइब्स कैसे दें, वो मैं आपको एक बहुत इजी और शॉर्ट कट बताऊंगी अभी। तो वैसे तो अगर आप हमारा प्रॉपर 7 डेज का जो कोर्स है वो करें तो उससे आपको मेडिटेशन क्या है वो ज्यादा क्लैरिटी होगी। सबसे पहले बात की मेडिटेशन कैसे करें, उसका बड़ा सिंपल सा है। दो चीजें हैं, हम सारा दिन में दो शब्द बहुत बोलते हैं, मैं और मेरा। तो सबसे पहले मेडिटेशन किसको करना है, मैं को। तो ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले हम लोग जो बताते हैं, आई एम अ सोल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो पहला स्टेप ऑफ मेडिटेशन है, क्योंकि हम मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, आसपास की जो सिचुएशंस हैं, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। और जब तक आप अपने आप को बॉडी समझेंगे कि आई एम अ बॉडी, तब तक आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो मेडिटेशन के लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी से ही, बॉडी कॉन्शियस से, स्मृति से, अवेयरनेस से डिस्कनेक्ट होना है। अपने रियल ट्रू हु एम आई, मैं सत्य में कौन हूं, उस स्वरूप में स्थित होना। तो मैं आई एम अ एनर्जी, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, ये पहला थॉट अपने अंदर लाए कि यहां पर मैं। तो अपने माइंड को वहां पर स्टिल करें, स्टिलनेस में ले आए कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे ही आप इस थॉट में चले जाएंगे तो आप अपने अंदर, आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे। व्हेन यू कनेक्ट विद योर रियल सेल्फ, तो जो आपके अंदर ट्रूली, जो आपकी ट्रू नेचर है, पीस, लव, हैप्पीनेस, ये जो ट्रू नेचर है, वो जो मर्ज हो गई थी, वो धीरे धीरे इमर्ज होने शुरू होगी। And you will start feeling peace, love, happiness, power within yourself. फिर आप जो अभी तक दूसरों से expect कर रहे थे कि वो मुझे शांति दे, वो मुझे प्यार दे, अब वो चीज आपको अपने अंदर से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज यू हैव स्टार्टेड, बिकॉज अभी तक हम अपने ट्रू सेल्फ पर फोकस ही नहीं कर रहे थे, हम अपने आप को बॉडी समझ के चल रहे थे, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द सेल्फ. ना सीट के साथ हमारा, अगर ट्री का सीट के साथ कनेक्शन ही नहीं होगा तो पूरे ट्री को स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी. तो वो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कंटेम्पलेशन, रियलाइजेशन. फिर उसके बाद वी कनेक्ट आवर सेल्फ विद द हायर बींग, द सुप्रीम बींग, द सुप्रीम सोल, द सोर्स ऑफ एनर्जी. फिर जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि योग माना कनेक्शन, जब हमारा उसके साथ फिर जब लिंक कनेक्शन जुड़ जाता है, जैसे यहां पर भी देख रहे हैं आज हम ये लाइट जो चल रही है विद द कनेक्शन, तो जब कनेक्शन जुड़ जाता है तो वी विल स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी विद इन आवर सेल्फ. ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, उसके लिए थोड़ा सा हमको कॉन्सेंट्रेशन, उसमें जो ऑब्स्टिकल आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. मेडिटेशन में ऑब्स्टिकल डालने वाला हमारा अपना ही मन है, इसलिए कहा मन जीत जगत जीत. जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया. अब मन अर्थात हमारे थॉट्स, अब हमारे जो थॉट्स हैं वो हमें यहाँ पर फोकस करने नहीं देते हैं. बार बार हमारा माइंड जो है, सपोज आपके लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है, आप कोशिश करेंगे मैं मेडिटेशन में बैठूं, मैं अपने आप को सेल्फ पर फोकस करूं, लेकिन आपका माइंड आपको हो सकता है कॉपरेट ना करे, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है बाहर, क्योंकि वो पुल हो जाता है बार बार एक्सटर्नल सिचुएशंस की तरफ. तो वहां पर हमें अपने माइंड को जैसे एक छोटे बच्चे को हैंडल करते हैं, ऐसे अपने माइंड को हैंडल करना पड़ता है उसको. जैसे देर आर टू वेज, Either you postpone your thoughts, जो इस तरह के thoughts आ रहे हैं उनको आप postpone करिए कि let me sit for meditation for 10 minutes, मैं आपसे 10 minute बाद बात करूंगा. ऐसे प्यार से मन को handle करना पड़ता है. कई लोग क्या करते हैं, control. Control जो चीज है उससे हम अपने मन को control कर लें. मन ऐसे control करने वाली चीज नहीं है कि आप उसको ऐसे दबा दें, दमन कर दे, नहीं. उससे क्या होगा, वो सप्रेशन की फीलिंग आती है और डिप्रेशन होता है. तो इसलिए मन को हमें बहुत, जैसे एक डेलिकेट चीज होती है, उस तरह से हैंडल करना पड़ता है अपने थॉट्स को. और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी आपकी. तो उसके लिए जैसे प्रॉपर आप कोर्स करेंगे तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि कैसे अपने थॉट्स को. बेसिकली मेडिटेशन इज मैनेजिंग आवर थॉट्स एंड डाइवर्टिंग आवर थॉट्स टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. जो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं उनको राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाना. और जो उन्होंने कहा कि वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स कैसे फैलाएं, अब इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एसी चल रहा है तो उसकी ठंडक तो ऑटोमेटिकली पूरे कमरे में ठंडक पहुंचाएगी पहुंचाएंगी. अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी क्या है, ईर्ष्या, घृणा, ये सब नेगेटिव है, ये दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव एनर्जी, जेलसी, हेटेड. वैसे तो लोग कहते हैं कि जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी, तो उसका टारगेट बदला लेना नहीं है, उसका टारगेट तो शांति है, लेकिन रूट कौन सा ले रहा है, रिवेंज का. चाहिए उसको शांति और रूट ले रहा है रिवेंज का. अब रॉन्ग रूट से आप राइट चीज तो नहीं पा पाएंगे ना. तो वाइब्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, वो नेचुरली पॉजिटिविटी एनर्जी के फॉर्म में, जैसे कि गुलाब से खुशबू ऑटोमेटिकली स्प्रेड होती है, गुलाब को बोलना नहीं पड़ता कि मेरी खुशबू तुम फैलो, इट्स नेचुरल. तो उसी तरह से हमारे से पॉजिटिव वाइब्स ऑटोमेटिकली जाएंगे.
बहुत ही अच्छी बात है आपने कहा कि पॉजिटिव होना इम्पोर्टेंट है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो वो नेचुरली वो चीज फैलती है. कुछ और क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहता हूँ. एक क्वेश्चन है जयंती कुमारी जी, जो हमसे पूछते हैं यूट्यूब से. वो पूछते हैं कि जब मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ तो अक्सर मुझे नींद आ जाती है, तो इसका क्या किया जाए. ये सिर्फ इनका ही एक सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्शियसली मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, वीडियो लगाते हैं मेडिटेशन का या कोई साइलेंट मेडिटेशन का म्यूजिक चलाते हैं, तो वो इतना सूदिंग लगता है कि वो नींद में चले जाते हैं।
ये बहुतों के साथ होता है कि जब मेडिटेशन में बैठते हैं, क्योंकि उसमें जो म्यूजिक बजाते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन इतना मिलता है। तो एक्चुअल में मेडिटेशन का मतलब कोई सोना तो है नहीं, मेडिटेशन इज नॉट स्लीपिंग। तो हम क्यों स्लीप मोड में चले गए, जबकि हमारा लक्ष्य स्लीप मोड में जाने का तो नहीं था, हम तो मेडिटेशन करने बैठे थे। तो स्लीप मोड में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम जो है, हमारे अंदर जो है, जो चर्निंग है थॉट्स की, वो नहीं हो रही होती है। हम जो है सिर्फ रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, सिर्फ वही मैंने कहा ना, वो मेडिटेशन को क्या ले लिया, रिलैक्सेशन टेक्निक। अब नेचुरली वो मेडिटेशन का सूदिंग म्यूजिक चला, उनको एक मिनट के लिए वो म्यूजिक का इफेक्ट आया तो रिलैक्सेशन हुई, तो वो उनको लगा कि बस ये मुझे अटेनमेंट हो गई, और वो धीरे 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 वो स्लीप मोड में चले जाते हैं। मेडिटेशन में हमको, मेडिटेशन इज क्रिएटिविटी, अपने अंदर, हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी लानी है हमको अपने अंदर। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि हमारे अंदर, आप कुछ नया सोचिए ना, रोज वही सोचते हैं, रोज एक ही खाना खा खा के बोर नहीं हो जाते, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। तो मेडिटेशन में हम अपने अंदर एक न्यूनेस लाते हैं, एक न्यू थिंकिंग डेवलप करते हैं कि मैं ऐसे, जिसको हम कहते हैं कि नॉलेज चाहिए। जिसके लिए होता क्या है कि हमको मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन ऐसे नहीं होगा, हमको स्पिरिचुअल विजडम भी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए ना, बिना इंग्रेडिएंट्स के तो आप कुछ कुक नहीं कर सकते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट्स हैं स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, वेदर यू हैव टू टेक एनी वैल्यू। आपको एक लक्ष्य लेकर के मेडिटेशन करना है, जैसे कि सपोज आपको लगता है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए ना, सेल्फ एनालिसिस कीजिए मेरे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, और उन चैलेंज
में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे वो बात कह रहे थे, मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूँ कि मेडिटेशन करते टाइम हम ये पर्पस नहीं लें फिर दिक्कत हो जाती है, पर्पस के साथ करना चाहिए। यदि आपने जो बात कही कि एक पर्पस फुली बैठे हैं हम कि मैं इस मेडिटेशन में क्या करने के लिए बैठा हूँ, तो वहां से आगे बढ़ पाना आसान होता है। सिर्फ रिलैक्स हो जाने से फिर तो नेचुरली लोग सो ही जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसे मैं बता रही थी कि पर्पस लेकर बैठना है और अपना सेल्फ एनालिसिस करके आपको लगता है कि मेरे अंदर जो लाइफ में, सपोज मेरे को सक्सेस में मेरा टॉलरेंस पावर कम है या रिलेशन में, तो मेडिटेशन में मुझे इस टारगेट से बैठना है कि आज मुझे मेडिटेशन में अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ानी है, अपने अंदर मुझे पेशेंस बढ़ाना है। ये टारगेट लेकर जब आप बैठेंगे मेडिटेशन में तो आपको कभी नींद नहीं आएगी। जैसे एक बच्चा भी पढ़ाई पढ़ता है तो उसके माइंड में एक पर्पस होता है, एक टारगेट होता है। अगर वो टारगेट नहीं होगा तो उसको पढ़ाई में भी नींद आएगी। जिन बच्चों का टारगेट नहीं होता है वो स्कूल में सोते हैं। तो उसी तरह से मेडिटेशन में हमें एक पर्पस, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, सेल्फ चेंज का, फॉर बेटरमेंट, अपने में एक और, एक मैं न्यू यू, माना एक नई मैं बनूं, मेरे अंदर एक नया चेंज आए जो मेरे लिए और दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, इस टारगेट से मेडिटेशन में बैठे और कोई वैल्यू या पावर लेकर के बैठे तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। यू विल स्टार्ट, और फिर जब आपको अटेनमेंट होना शुरू होगा ना, अब नींद इज नॉट एन अटेनमेंट, जब आप पर्पसफुल बैठेंगे और आपको अटेनमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ी है, जो कि आपको जब आप व्यवहार में जाएंगे तो आपको डिफरेंस अपने में नजर आएगा। जो आज हम अपने में देखते हैं कि आज मेडिटेशन करने से पहले सपना क्या थी और मेडिटेशन करने के बाद आज मेरे में क्या चेंजेस आए हैं, जो अटेनमेंट्स आई हैं, वो अटेनमेंट इंसान के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करती है। फिर मेडिटेशन करने में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं मैं और करूं, मेरे अंदर और डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तो वो पर्पस लेकर के बैठना पड़ेगा तब। और हमारे तो बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, वो चलाएं, सिर्फ म्यूजिक नहीं चलाएं, या जैसे सॉन्ग्स हैं हमारे, वो भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, वो सॉन्ग्स लगाएं अगर नींद आ रही है। वो मैंने भी देखा है कि सिर्फ रिलैक्सेशन म्यूजिक बजाएंगे तो उसमें वो फिर वो स्लीप मोड में चले जाएंगे।
और वैसे मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप आदत बनाते जाएंगे, तो म्यूजिक कैसा भी हो, म्यूजिक हो नहीं हो, तो भी मतलब मेडिटेशन कर पाएंगे, ऐसा बहुत सारा।
हाँ, वो प्रैक्टिस से फिर जैसे आगे डेवलप होता चला जाता है। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है कमेंट्री का या कुछ, देन स्लोली स्लोली हम वी बिकम एक्सपर्ट इन दैट। जैसे जब हम पहली बार केक बनाते हैं तो साथ में किताब रखते हैं, एक एक इंग्रेडिएंट देख देख करके करते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती है, हम फटाफट वो केक बना लेते हैं। तो उसी तरह से इनिशियल सपोर्ट चाहिए होता है, फिर उसके बाद तो नेचुरल हो जाता है, फिर इस तरह की चीजें नहीं चाहिए।
दीदी अगला सवाल मैं लेता हूँ परमिंदर कौर से। परमिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पे, और वो कहते हैं कि मेडिटेशन करते हुए क्या सोच आना चाहिए, मन में कौन से विचार आने चाहिए, ऐसा पूछते हैं। जब मैं करती हूँ तो यूजलेस बातें मन में आती हैं, क्या किया जाए?
जब मंथन किया था तो पहले जहर निकला था, फिर अमृत निकला था। सागर मंथन किया था, भक्ति में बताते हैं, तो पहले जहर निकला था, फिर उसके बाद जो है अमृत निकला था। अब कई बार ऐसा होता है, हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ये बहुत कॉमन है, जो आपने सारा दिन में ही सोचा होगा वही सोच जब मेडिटेशन में बैठेंगे ना तब आपको आएगी। और पास्ट की बातें, जो 10 साल पुरानी बातें हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तब आपके सामने आएंगी, ये होता है। अब उसका बहुत एक्चुअल में स्पिरिचुअली अगर देखें तो इट हैज अ डीप मीनिंग, एक बहुत गहरा राज है उसके पीछे, कि जो हमारे अंदर आत्मा के अंदर किचड़ा भरा हुआ है वो बाहर निकलता है। ये कई बार ऐसा होता है, इनिशियल जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो आता है। अब मेडिटेशन में अगर ये निकल रहा है बाहर, जैसे आप देखते हैं कि एक गंदा पानी है, उसके वो उसको साफ करने के लिए उसके अंदर साफ पानी डाल दो तो वो गंदा पानी एक टाइम के बाद साफ हो जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर शुरू में नेगेटिव थॉट आना, इसमें कोई डिस्टर्ब होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेजॉरिटी लोगों के साथ होता ही है शुरू में, इसमें डिस्टर्ब नहीं हो, परेशान नहीं हो। लेकिन हमारा वही, मैं अगेन वही बात कहूंगी कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नेगेटिव को हमें इग्नोर करके अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार जो है वो अपने अंदर डालते चले जाए। ये हमको इनिशियली इंटेंशनली करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, मैं आत्मा राजा हूं और मेरे पास सारा कंट्रोल है। मन में मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, इट्स माई चॉइस। ऐसा नहीं है वो मन की चॉइस है। अब कोर्ट में जाते हैं, किसी ने खून किया होता है तो ऐसा तो नहीं कहते हैं क्योंकि आपके हाथ ने खून करा है तो इसलिए आपके हाथ को सजा दी जाएगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हाथ रिस्पॉन्सिबल है क्या? जज ये तो नहीं कहता है। उसी तरह से आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, तो पहले तो माइंड के मास्टर बनिए। आई एम द सोल द मास्टर, जब तक आप मास्टर की सीट पर नहीं बैठेंगे तब तक आप कंट्रोल माइंड को नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर मन क्या करता है, उसको तो आदत पड़ी हुई है फालतू सोचने की, वो फालतू सोचता है। और दूसरा, हमको रिपीटेडली मन को जो है पूछना है, भाई तुम कहाँ गया, किससे पूछ के गया। तो जब आप उसको दो तीन बार टोकेंगे, जैसे आप छोटा बच्चा होता है वो बार बार मिट्टी खाता है, आग की तरफ अट्रैक्ट होता है, हम उसको क्या करते हैं? माँ बाप तो सारा दिन बच्चों को टोकते ही रहते हैं, अपने मन को कितना टोकते हैं कि भाई तू कहाँ जा रहा है, क्यों तू जा रहा है इधर, तेरे को क्या फायदा मिलेगा व्यर्थ सोचने से, ये मन तू कौन जा रहा है। तो ये मेडिटेशन में हमें इनिशियली अपने आप को इंटेंशनली, यही पुरुषार्थ है, यही एफर्ट है, ये अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, तो फिर थॉट्स जो हैं वो डाइवर्ट होते हैं। बाकी हम सोचें कि हम ऐसे बैठ जाएं अगेन और अपने आप वो, फिर तो वो माइंड कहीं का कहीं ट्रेवल करेगा, वो तो फिर अब जैसे लॉकडाउन है तो लोगों को मॉल्स याद आ रहे होंगे, किसी को गोलगप्पे याद आ रहे होंगे, हम गोलगप्पे खाते थे, पता नहीं अब कब मार्केट में जाकर गोलगप्पे खाने को मिलेंगे, किसी को मॉल्स याद आ रहे होंगे, बैठे होंगे मेडिटेशन में और याद वो आ रहा होगा। माइंड तो ऐसा ही है, वो तो ट्रेवल करेगा इधर उधर, लेकिन मुझे उसको मैनेज करना है, कंट्रोल।
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने मेडिटेशन के बारे में सुना था, आपके एक्सप्लेनेशन बहुत ही सटीक हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं इस चीज को। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू कहा है, अप्रिशिएट किया है आपके गाइडेंस को। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि बहुत बार लोग नहीं मानते हैं कि चलो मेडिटेशन पे बैठे तो हो जाना चाहिए, मन ऐसा होना चाहिए, बट ये चीज समझना जरूरी है कि मन यहाँ वहां जाएगा, बट उसको कंट्रोल पे लाना, उसको सही सही दिशा देना, यही चीज मेडिटेशन है। आपने बच्चों के बारे में भी बात करी कि बच्चे अगर पढ़ने वाले होते हैं तो अगर एक गोल लेके बैठते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना उनको भी नींद आती है। तो एक बच्चों से ही जुड़ा हुआ सवाल है, सिस्टर प्लीज टेल हाउ स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन स्टडीज। ये खुद स्टूडेंट है और वो सवाल पूछते हैं, आई एम कंप्लीटली अनेबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज, आई एम इनटू फोन एंड टीवी नाउडेज अ लॉट, How should I avoid this? ये मिलता जुलता ही एक सवाल और भी आया था जो ये पूछ रहे थे कि हम पढ़ाई पर फोकस कैसे ले आ सकते हैं, और अभी तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए?
एक्चुअली ये जो सारी बातें हैं ये हमारे थॉट्स से ही रिलेटेड है और हमारी विल पावर से रिलेटेड है और हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब होता क्या है कि आज की इस दौर में जहां साइंस ने हमें बहुत चकाचौंध वाली दुनिया दिखा दी है और धीरे धीरे आज हमारी डिपेंडेंसी इन चीजों पर बढ़ती चली जा रही है, हमने सोचा नहीं और हमने इनको अपने जीवन का आधार बना लिया। जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरा माइंड जो है वो फोकस नहीं हो पाता, डाइवर्ट होता है, और डाइवर्ट भी कहाँ हो रहा है, फोन्स में, टीवीज में, वहां। अब अगर गहराई से सोचें, पढ़ाई जो कि मेरे लिए फायदेमंद है वही मेरे को आगे जाकर फ्यूचर में मेरा स्टेटस कहो या मेरी कमाई कहो या मेरी लाइफ कहो, उस पढ़ाई से ही होगी, ये बुद्धि समझ रही है। लेकिन जो मन है वो चंचल होने के कारण वो टीवी और फोन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब पढ़ाई और उसमें टीवी और फोन में सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि उसमें क्या ऐसी अट्रैक्शन है जो मेरा मन उस तरफ जा रहा है। उसमें अट्रैक्शन है अल्पकाल की टेम्पररी एंटरटेनमेंट, टेम्पररी खुशी, टीवी देख करके या फोन पर चैटिंग करके हमको टेम्पररी एक खुशी मिलती है। अब वो जो टेम्पररी खुशी है ना वो मेरे मन को खींचती है, मन चंचल है, उसको लगता है वो फोन करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, या इन अदर वर्ड शायद सेटिस्फेक्शन मिलती हो कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद मिलता हो। लेकिन पढ़ाई में तो ना खुशी है ना आनंद है, उसमें तो ये दोनों चीजें है ही नहीं, वो तो कैरियर ओरिएंटेड है और कई बार तो बच्चों को पढ़ाई कर बड़ी बोरिंग लगती है। अब ऐसे जब दो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे आप देखिए, एक तरफ आपको अंकुरित मूंग पड़े हों और एक तरफ पकौड़े पड़े हों, तो आप क्या चूज करेंगे?
पकौड़े चूज करते हैं मेजॉरिटी लोग।
मेजॉरिटी गुलाब जामुन, और जबकि मालूम है कि वो अनहेल्दी है और ये जो है ये हेल्दी है। तो ये जो है ये हर जगह लागू होता है कि जो चीज हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है हमारा मन उस तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो हेल्दी है हमारे लिए बेनिफिशियल है वहां मन जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। वो कई बार मुझे याद है मैं बचपन में नाक ऐसे पकड़ के दूध पीती थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जबकि वो हेल्दी है, उस समय बोन्स के लिए बच्चों के लिए हेल्दी होता है, और कोक बड़े गटक गटक पी जाती थी ना। तो क्यों? तो ये जो है यहां पर हमको अपने ऊपर जो है वाइज डिसीजंस लेने पड़ते हैं, यहां पर हमें विजडम यूज करना पड़ता है, जो कि हमको, जैसे हम कहते हैं ना कि मन अगर घोड़ा है तो बुद्धि उसकी दगान है। तो हमको यहाँ पर मन का नहीं सुननी होती, जहां हेड और हार्ट की बात आ जाती है तो इस सिचुएशन में हमें अपने हेड को यूज करना होता है, माइंड की नहीं सुननी होती, मन की नहीं, दिल की नहीं सुननी होती है, क्योंकि कहीं हम दिल की सुनते हैं कहीं दिमाग की। तो यहां पर मुझे अपने साथ एक वही डिटर्मिनेशन लानी होती है कि नो, जैसे आप देखते डायबिटिक पेशेंट है उसके आगे मीठा रख दो उसको अट्रैक्शन होगी, कहेगा अच्छा आधा खा लेता हूँ, पूरा नहीं खाता हूँ, 50% कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, आधा खा लेता हूँ आधा नहीं खाऊंगा, है ना, इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, जबकि उसको मालूम है इट्स हार्मफुल फॉर मी। तो मन ऐसा चंचल है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपने बुद्धि को, अपनी विजडम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है कि नहीं, डिटर्मिन होकर, करेजियस होकर कि नहीं, अपने आप को बार बार टोकना पड़ता है कि नहीं इट्स नॉट गुड फॉर मी। जैसे भक्ति में व्रत लेते हैं ना, ऐसे फास्ट लेने पड़ते हैं तब जाकर के हम इसको विन करते हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। वैसे तो सवाल के वक्त में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, अदरवाइज ईमेल पर, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जहां पर भी लोग इस प्रोग्राम को लाइव देखते हैं। हम हर दिन कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सवाल ले सकें। एक और सवाल अभी हमारे सामने है, यूट्यूब से हमारे सामने गुड़िया कौर जी है, और उनका सवाल है, दीदी मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ और मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, क्या मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये सवाल पूछते हैं।
सबसे पहली बात, आप अपने अंदर से ये थॉट निकाल दीजिए कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन जो है वो बहुत आज सब लोग अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर से ये थॉट एकदम से अभी ही तुरंत निकाल दीजिए कि आपको डिप्रेशन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अपने थॉट्स को, क्योंकि डिप्रेशन का कारण क्या है वो मुझे मालूम नहीं, जरूर कुछ ना कुछ बाहरी सिचुएशन होगी, या वैसे ही आपको जो आप कह रहे हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं तो ये कह रही हूं कि आपको डिप्रेशन है नहीं, सिर्फ टेम्पररी आपके लाइफ में थोड़ी सी उदासी आ गई है ना। जैसे कई बार होता है ना लाइफ में, कई बार जो जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, या फेलियर्स के कारण, या कुछ ऐसे कारण होते हैं जो मन उदास होता है। तो उदासी का एंटीडोट क्या है? खुशी। जैसे आप वैसे देखा जाए तो उदासी की कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे अंधेरे की कोई डेफिनेशन नहीं होती है ना, डार्कनेस की कोई डेफिनेशन है? कोई डेफिनेशन नहीं है। डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। उसी तरह से उदासी इज एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी ना होना, जब हमारे जीवन से में खुशी नहीं होती है तो हमारे को उदासी आती है। अब कई लोग कहते हैं कि जब बाहर में खुशी नहीं है तो हम खुश कैसे रहें? अरे खुशी तो आपके अपने अंदर है, हैप्पीनेस इज योर चॉइस। आप कभी किसी को कहते हैं कि विश यू अ हैप्पी डेस्टिनेशन, वी से विश यू अ हैप्पी जर्नी। तो हमारी लाइफ एक जर्नी है और इट्स अ हैप्पी जर्नी, तो मेरी लाइफ इज अ हैप्पी जर्नी, खुशी मुझे चूज करनी है, खुश रहना आपकी चॉइस है। एक्सटर्नल सिचुएशंस अलग चीज है, इट डजंट मीन कि एक्सटर्नल सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो आपको उदास होना ही है, नो। दूसरी बात, खुश रहने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है देना। जितना आप दूसरों को खुशी देंगे आपकी खुशी बढ़ेगी, देने में खुशी मिलती है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। एक राजा होता है, वो उदास हो जाता है, तो वो अपने मंत्री से पूछता है कि मैं खुश होने के लिए क्या करूं? तो वो कहता है कि आपको अगर खुश रहना है तो आप दान करना, लोगों को, प्रजा को दान करो तो आपको खुशी मिलेगी। तो वो करता है, उसको खुशी मिलती है। एक गरीब आदमी लाइन में लगा होता है, अब वो क्या करता है, जब उसकी टर्न आती है तो वो लेता नहीं है, छोड़ देता है और दूसरे को चांस दे देता है। वो रोज ऐसे करता है। तो वो राजा एक दिन उससे पूछता है, तुम ऐसे क्यों करता है? वो बड़ा हैरान होता है। तो वो कहता है, राजा आपके पास तो बहुत धन है, वो धन देख करके आप खुश होते हो, मेरे पास सिर्फ एक टर्न ही है जो मैं किसी को दे सकता हूँ, मैं वो सबको दे करके अपने आप को खुश करता हूँ। तो कई लोग कहते हैं जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम दे क्या, तो देने को बहुत कुछ है। तो देने से खुशी मिलती है। आप अपने अंदर खुशी बढ़ाइए और ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको डिप्रेशन है। और सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने का, खुशी बढ़ाने का, आप खुशी बांटिए। खुशी कैसे बांटिए? लोगों को सेटिस्फाई कीजिए, उनके साथ प्रेम से चलिए, तो आपके अपने अंदर खुशी आएगी, नेचुरल आएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो ये अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आपको कोई डिप्रेशन है। बस आप सोचिए कि आई एम अ हैप्पी सोल, मैं बहुत खुश हूं, मेरे जैसा खुश दुनिया में कोई नहीं है, तो आपके अंदर खुशी आ जाएगी।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये पॉजिटिव इनपुट अपने आपको देने की जरूरत है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। बहुत बार अगर आप क्लिनिकली टेस्टेड हैं, आप क्लिनिकली भी अगर आपको डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है, तो उस टाइम पे भी ये जरूरत है कि हम ट्रीटमेंट्स के साथ साथ अपने आप को ये पॉजिटिव इनपुट्स देते रहें कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। अक्सर हॉस्पिटल्स में भी एक चीज कही जाती है कि अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आप सोचने लगे हेल्थ के बारे में, आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे और आप चाहेंगे हेल्थ आए तो नहीं होता है, तो इसके हेल्थ के बारे में सोचें, अच्छी चीजों के बारे में सोचें। दीदी अब वक्त तो कहता है कि हम और सवाल नहीं ले सकते, बट नॉनदलेस आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु आस्क्ड क्वेश्चंस टुडे, जिन्होंने भी हमारे साथ जुड़कर सवाल पूछे, अपने कमेंट्स शेयर किए, अप्रिसिएशन दिया, फीडबैक दिया, उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड आप सभी की तरफ से मैं सपना दीदी का थैंक यू कहना चाहता हूँ जो आज दिल्ली से इंडिया के कैपिटल से हमारे साथ जुड़े और आप सभी को गाइडेंस ऑफर किया, हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर दिया और बहुत ही लाइट तरीके से प्रोफाउंड आंसर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सपना दीदी का। दीदी अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप हम सबको मेडिटेशन करवाएं और हर दिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, साथ में मिलकर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगता है और साथ साथ करने की वजह से उन्हें लगता है कि हाँ इतने सारे लोगों के साथ कनेक्टेड होके हम मेडिटेट कर रहे हैं, तो प्लीज गाइड करें हम मेडिटेशन के लिए अगले 3-4 मिनट के लिए।
तो अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे और मेडिटेशन में हम जो आज का टारगेट लेंगे वो गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स फॉर एवरीवन, क्योंकि आज दुनिया में बहुत से लोगों को भय भी है, दुख भी है, अशांति भी है, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी है। तो सबसे अच्छी चीज है देने की, जैसे आज कईयों ने डिप्रेशन का भी पूछा, तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज जो है देने की, जो सबके पास है, वो है गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स। तो आज मेडिटेशन में हम पूरे विश्व को गुड विशेस देंगे, प्योर फीलिंग्स देंगे कि सब सुखी रहें, खुश रहें और सबकी चिंताएं से सब मुक्त हो जाएं। ऐसी प्योर फीलिंग्स हम अपने अंदर आज मेडिटेशन में देंगे। सभी रिलैक्स हो जाएं, बाहरी सब बातों से अपने मन को समेट लें। आप कुछ क्षणों के लिए स्वयं को एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पॉजिटिव एनर्जी, जो सेंटर ऑफ द फोरहेड है, वहां पर फोकस कीजिए। मैं एक डिवाइन लाइट हूं, एक पॉजिटिव एनर्जी हूं, मेरे अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सब गुण और सर्व शक्तियां हैं। पूरे विश्व में आज अनेक आत्माएं दुखी और परेशान हैं। वसुधैव कुटुंब विश्व हमारा परिवार है। विश्व की सर्व आत्माओं को शांति, प्रेम और आनंद, शक्ति के वाइब्रेशंस ऊर्जा के रूप में दे रही है। देने में लेना समाया है। प्रकृति को भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दे रही। सर्व का भला हो, सबको सुख मिले, मन में यही शुभ चिंतन है। मेडिटेशन मानो सदा स्वयं के लिए और अन्य आत्माओं के लिए शुभ सोचना, शुभ चिंतन करना। सदा ऐसे ही। शुभकामनाएं देते रहें। अब एक सेकंड के लिए पॉइंट ऑफ लाइट बन। इस दुनिया से बियॉन्ड डिटैच हो जाएं और स्वयं को सुपर पावर, सुप्रीम सोल से कनेक्ट करके स्वयं में ऊर्जा, शक्ति का अनुभव करें। ये ऊर्जा मुझे शक्ति, शांति और सुख सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। परमात्मा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। प्रकृति की उस शक्ति से पावन हो रहे। ओम शांति शांति शांति।